अगले दिन शाम को ही माधव ने कविता को बाइक और उसके पति के साथ रुखसत कर दिया था। कविता के इरादों पर पानी फेर दिया था उसने, जिस पर वो गुस्से से फुफकारती हुई वहां से गई थी और जाते जाते माधव को खूब सुना भी गई थी। रात का वक्त था, माधव एकदम खामोश था और इस वक्त अपने रूम में अकेला बैठा हुआ था। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी तंद्रा टूटी। दरवाजे पर खड़ी अनुपमा जी को देखते ही वो हैरानी से उठ खड़ा हुआ। मम्मी, आप इस वक्त यहाँ? अब तक सोई नहीं आप? बस बेटा, मन में कुछ बात थी तो नींद नहीं आ रही थी, सोचा आपसे आकर बात कर लूं। माधव कुछ पल उन्हें देखता रहा, काफी गंभीर लग रही थी वे, मतलब जरूरी ही बात होगी, सोचते हुए माधव ने उन्हें अंदर बुला लिया। आइए ना मम्मी। कहिए मम्मी, ऐसी कौन सी बात थी जो आपको इतना परेशान कर रही थी कि आपको नींद नहीं आई और आप इतनी रात गए मुझसे बात करने चली आईं? हम आपके बारे में सोच रहे थे बेटा, आपने आज तक सिर्फ हम सबके बारे में सोचा है, अब कुछ अपने बारे में सोचिए। आप कहना क्या चाहती हैं मम्मी? माधव उनकी इन रहस्यमयी बातों में उलझ गया। माधव बेटा, अपनी माँ की ये आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए, हमारे जीते जी शादी कर लीजिए और ये घर, रेस्टोरेंट सब अपनी पत्नी के नाम कर दीजिए। अनुपमा जी ने जो कहा उसे सुनकर माधव बुरी तरह चौंक गया। मम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ बेटा, ये घर और रेस्टोरेंट तुमने अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया है, पर आज तुम्हारी बहन इसमें हिस्सा लेने आ गई, कल को उसकी देखा देखी बाकी दोनों भी ऐसा व्यवहार करने लगेंगी। अभी तो हम जिंदा हैं तो उन्हें रोक लिया, कल को हमें कुछ हो गया तो हमारी संपत्ति में वे भी अपना हिस्सा लेने आ जाएंगी और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आपने अपनी पूरी जिंदगी हमारी और अपनी बहनों की जिम्मेदारी उठाने में निकाल दी, अब अपने बारे में सोचिए, शादी करके अपना घर बसाइए, अपना परिवार बढ़ाइए। कब तक ऐसे अकेले रहेंगे? अभी तो हम हैं, शिखा है, पर अब वो भी बड़ी हो गई है, कल को उनकी शादी हो जाएगी तो वो भी बाकी दोनों जैसे अपनी घर गृहस्थी में रम जाएंगी और हमारी जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं, आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे और हम मरने से पहले आपको अपनी बीवी बच्चे संग खुश देखना चाहते हैं, अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। अनुपमा जी की सारी बातें सच थीं, माँ थी वो उसकी तो भला उसकी चिंता उन्हें कैसे ना होती, और कविता का व्यवहार देखकर तो उनके मन में एक डर सा बैठ गया था। माधव कुछ पल उनकी बातों के बारे में सोचता रहा, फिर उसने मन ही मन कुछ फैसला किया और गंभीरता से बोला, मम्मी मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, मैं करूँगा शादी, पर इस बार लड़की मेरी पसंद की होगी। माधव की बात सुनकर अनुपमा जी के चेहरे पर खुशी व हैरानी के मिले जुले भाव उभर आए। बेटा, आप किसी को पसंद करते हैं? हाँ मम्मी, मैं किसी को पसंद करता हूँ और उन्हें ही अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। बेटा, कौन है वो हमें बताइए, हम कल ही उनके घर रिश्ता ले जाएंगे। अनुपमा जी तो बेहद खुश व उत्सुक नजर आ रही थीं और अपने बेटे की पसंद जानने की जिज्ञासा भी प्रबल हो चुकी थी। माधव अब कुछ उलझ सा गया, पर बात शुरू की थी तो अब कदम पीछे हटने का कोई मतलब ही नहीं था, सो उसने हिम्मत करके उनके सवाल का जवाब दे दिया। वो बहुत अच्छी हैं मम्मी, और आप भी उन्हें जानती हैं? हम जानते हैं उन्हें, अनुपमा जी ने हैरत से सवाल किया, जिस पर माधव ने सहजता से हामी भर दी। हाँ मम्मी, आप उन्हें जानती हैं, मैं राधिका की बात कर रहा हूँ, वही राधिका जिनसे पहले भी मेरी शादी की बात चली थी पर रिश्ता बीच में ही टूट गया था। माधव ने जो खुलासा किया उसने अनुपमा जी को हिलाकर रख दिया। कुछ पल वे सदमे की स्थिति में बैठी फटी आंखों से अचंभित सी उसे देखती ही रह गईं, मानो उसकी कही बातों पर विश्वास करने की कोशिश कर रही थी। उसका तो तलाक हो रखा है बेटा, आप उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? क्यों नहीं सोच सकता मम्मी, और क्या हुआ अगर उनका तलाक हो रखा है तो? तलाक तो मेरा भी हो रखा है ना, अगर मैं दोबारा शादी करके फिर से अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू कर सकता हूँ तो ये हक तो उन्हें भी मिलना चाहिए। जो लड़की अपना पहला रिश्ता नहीं निभा सकी उसे हम इस घर की बहू कैसे बनने दे सकते हैं? अनुपमा जी ने इस रिश्ते के खिलाफ दूसरा तर्क रखा और माधव के लबों पर व्यंग्य भरी मुस्कान उभर आई। मतलब आप कहना चाहती हैं कि उनकी पहली शादी टूटी उसमें कसूर उनका रहा होगा, उनमें ही कोई कमी रही होगी? इस हिसाब से तो मेरी शादी टूटी उसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार रहा होगा, मुझ में ही कमी थी कि उस रिश्ते को नहीं निभा सका, मेरे कारण ही सुमन से मेरा रिश्ता टूटा होगा। अपने तर्क से माधव ने उन्हें निशब्द कर दिया था। वे आगे कहने को कुछ सोच पाती उससे पहले ही माधव ने उनकी हथेली को अपनी हथेलियों के बीच थाम लिया और गंभीरता से आगे कहना शुरू किया। मैं जानता हूँ मम्मी कि राधिका कभी से मेरे लिए आपकी पसंद नहीं रही, क्योंकि वो आपको मेरे काबिल नहीं लगती, इसलिए सालों पहले भी आप इस रिश्ते के खिलाफ थीं और आज तो आपको एक नई वजह मिल गई है, पर मुझे राधिका पसंद है, सालों पहले भी थी और आप ये बात बहुत अच्छे से जानती थीं, इसलिए रिश्ता टूटने की ऐसी वजह बताई मुझे कि मैं कुछ कह नहीं सका और आप सबके दबाव में सुमन से उस बेमन के रिश्ते में बंध गया, और ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैं उस रिश्ते में कितना खुश रहा। राधिका मेरे लिए हमेशा से मेरी पहली पसंद रही है, मेरी नज़रों में हमेशा मेरे काबिल थी और आज भी मुझे उनमें कोई कमी नज़र नहीं आती। वो तलाकशुदा है फिर भी मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि जानता हूँ कि वो रिश्ता ही गलत था, उसके टूटने में राधिका की कोई गलती नहीं थी, वो तो खुद से जुड़े रिश्ते को निभाने के लिए खुद की खुशियों तक को हंसकर कुर्बान कर देती है। भला उनमें कमी कैसे हो सकती है? उन्होंने तो अपने परिवार पर अपनी जिंदगी न्योछावर कर दी। भला उनसे बेहतर कौन इन रिश्तों की कद्र समझेगा? आपने उन्हें गलत पैमानों पर माप कर ठुकरा दिया और वो लड़की इसके बावजूद रोज हॉस्पिटल आती रही आपको देखने, आपकी सलामती की दुआएं मांगती रही, कभी आपके लिए नाराजगी नहीं जाहिर की। आपको कोई परेशानी ना हो और बुरा ना लगे इसलिए कभी आपके सामने तक नहीं आई, पर जब तक आप हॉस्पिटल में रही एक दिन ऐसा नहीं गया जब वो आपको देखने ना आई हो। आज भी फोन करती है तो आपके बारे में जरूर पूछती है। उस वक्त जब मैं बिल्कुल अकेला हो गया था तब उन्होंने मुझे और शिखा दोनों को संभाला था, बिना किसी रिश्ते के साथ निभाया था। आप बताइए इससे अच्छी बहू कहाँ मिलेगी आपको? हॉस्पिटल में कविता ने इतनी बेइज्जती की उनकी, फिर भी वो आपके लिए वहां आती रही, इससे ज्यादा साफ दिल और नेक बहू कहाँ मिलेगी आपको? उन्होंने उस मुश्किल वक्त में मुझे संभाला, मेरा साथ दिया, उनसे बेहतर पत्नी कहाँ से ढूंढ पाऊंगा मैं? यहाँ तक कि जब कविता घर आई और रेस्टोरेंट और घर बेचने कहने लगी, उस वक्त भी राधिका ने बिना कुछ कहे मुझे बाइक खरीदने के लिए अपने पैसे दे दिए, जबकि उन्हें खुद अभी नई स्कूटी लेने की जरूरत है, पर उन्होंने खुद से पहले मेरे बारे में सोचा। आप बताइए उनके जैसी निस्वार्थ और साफ दिल की लड़की दूसरी कहाँ होगी जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचे? शिखा निशा दोनों उन्हें अपनी भाभी मान चुके हैं। मैं उन्हें अपनी जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, बस आपकी हाँ का इंतजार है। सालों पहले मैंने आपकी पसंद को बिना किसी सवाल के अपना लिया था, क्या इस बार आप मेरी पसंद को एक मौका नहीं दे सकती? मेरी पसंद पर भरोसा नहीं कर सकती? जानता हूँ कि सालों पहले आपने ही इस रिश्ते के लिए मना किया था, इसलिए शायद अब खुद से रिश्ता लेकर जाना आपके आत्मसम्मान पर चोट होगी, पर वो बहुत भले लोग हैं मम्मी, वो आज भी आपका स्वागत उसी इज्जत और मान के साथ करेंगे।
मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि राधिका ही मेरी पहली और आखिरी पसंद है, उन्हीं से मेरी खुशियां जुड़ी हैं। अगर इस बार मैं शादी करूंगा तो राधिका से ही करूंगा, और मुझे अपनी पसंद पर पूरा विश्वास है कि अगर आप उन्हें एक मौका देंगी तो चंद दिनों में वो आपका दिल भी जीत लेंगी। अब फैसला आपको करना है कि आपके लिए राधिका के प्रति बनाई अपनी धारणा अहम है या मेरी खुशियाँ, आपके लिए आपका अहम ज़रूरी है या मेरी ज़िंदगी, आपके लिए आपकी नापसंदगी की ज़्यादा अहमियत है या मेरी पसंद की। फैसला आपको लेना है। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं तो मैं आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर राधिका से शादी नहीं करूंगा, पर अगर राधिका से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं कभी शादी भी नहीं करूंगा। माधव ने दृढ़ता के साथ अपना फैसला सुना दिया था। जब सालों पहले की बात उठी तो अनुपमा जी कुछ शर्मिंदा सी हो गई, हॉस्पिटल वाली बात पर हैरानी से उसे देखने लगी। माधव की बातें सुनते हुए कई बार उनके चेहरे के भाव बदले और वे बस माधव की आंखों में गहराई तक समाये राधिका के लिए प्यार को महसूस करती रहीं। उसके एहसास, उसके जज्बात, जिन्हें उन्होंने सालों पहले देखकर भी अनदेखा कर दिया था, आज फिर उनके सामने थे और आज उनके लिए उन्हें नज़रअंदाज करना मुमकिन ना हो सका। अनुपमा जी कुछ पल उसे देखती रहीं, फिर उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गईं। पीछे बैठे माधव के चेहरे पर अजीब सी उदासी छा गई। राधिका बेटा, आपने शादी के बारे में क्या सोचा है? राधिका डिनर करने बैठी ही थी कि आशुतोष जी का सवाल सुनकर उसका हाथ हवा में ही रुक गया और निगाहें उनकी ओर उठ गईं। पापा, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अब मैं शादी नहीं करूँगी, तो आप मेरी फ़िक्र ना करें। वैसे भी अब हमें अप्पू के बारे में सोचना चाहिए, उसकी शादी की उम्र है, मेरी नहीं। मेरी जब शादी होनी थी, जिससे होनी थी, हो गई। राधिका का लहजा मजबूत था और चेहरा गंभीर। वो फैसला ले चुकी थी और कोई उम्मीद नहीं थी कि उसका फैसला बदलेगा। उसका ये जवाब सुनकर आशुतोष जी के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। राधु बेटा, अप्पू के बारे में तो हम सोचेंगे ही, कुछ अपने भविष्य के बारे में भी सोचिए। आज हम और अप्पू आपके साथ हैं, कल को हम दोनों नहीं रहेंगे तो आप बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। और अगर मैंने शादी कर ली, बाकियों जैसे मैं भी आपको छोड़कर चली गई, तो आप इस उम्र में बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। फिर मेरा शादी पर से मन उठ गया है, जितना झेलना था एक बार झेल लिया, दोबारा अपनी ज़िंदगी के साथ जुआ खेलने की ना तो मुझमें हिम्मत है और ना ही चाहत। बड़ी मुश्किल से जिंदगी में ठहराव आया है, तो अब इस सुकून के साथ ही जीना चाहती हूँ। आप प्लीज शादी का जिक्र करके मुझे बार बार वो सब याद मत दिलाया कीजिए जिसे मैं सालों से भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। दीदी, अगर फलों की टोकरी में रखा एक सेब खराब हो तो उसे निकालकर फेंका जाता है, ना कि पूरी टोकरी को सड़ा मानकर सेब खाना ही छोड़ दिया जाता है। एक शादी नाकाम हुई इसका मतलब ये नहीं कि शादी जैसे रिश्ते को ही छुटला दिया जाए। जिंदगी में आने वाला एक लड़का घटिया निकला इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में हर लड़का ही खराब है। जैसे किसी एक के किए की सज़ा सबको देना गलत है, वैसे किसी एक बेहुदे इंसान के कारण खुद को इस दुनिया से अलग कर लेना, अपनी खुशियों का गला घोंट लेना, खुद को प्यार मोहब्बत और शादी के रिश्ते जैसे खूबसूरत एहसासों से वंचित कर लेना, तन्हाई में घुट घुट कर जिंदगी काटना, किसी और के कारण अपनी जिंदगी खराब करना भी गलत है। इस बार अर्पिता ने खामोशी तोड़ी थी और वो यहीं नहीं ठहरी, उसने आगे कहना जारी रखा। आप कह रही हैं कि आप अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, पर सच तो ये है कि आज भी आपकी जिंदगी उसी मोड़ पर ठहरी हुई है। अपने परिवार के लिए आपने अपने दर्द को अपने सीने में छुपा लिया, जिंदगी जीना छोड़कर जिम्मेदारियों को निभाने में खुद को भुला दिया। गलती किसी और की थी, पर आप सजा आज तक खुद को और अपने साथ साथ हम सबको दे रही हैं। अगर सच में आप अपना पास्ट भूल गई हैं, तो निकाल फेंकिए उन्हें और उनकी जुड़ी बुरी यादों को अपने मन से। बढ़िए अपनी जिंदगी में आगे, थामिए किसी ऐसे इंसान का हाथ जो जिंदगी भर आपका साथ निभा सके, आपको वो मान वो खुशियां दे जिसकी हकदार हैं आप, पर आपको कभी वो खुशी मिली ही नहीं। अपनी अब तक की जिंदगी में संघर्ष करती आई हैं ना आप, अपनी इच्छाओं ख्वाहिशों सबको मारकर बस जिम्मेदारियां निभा रही हैं, तो अब खुद के लिए जीना शुरू कीजिए। क्योंकि जैसे आप हम सबको खुश देखना चाहती हैं, वैसे हम भी आपको खुश देखना चाहते हैं। जैसे पापा को मेरी चिंता है, वैसे आपकी भी है, क्योंकि आप भी उनकी बेटी हैं। आप तो सबके बारे में सोचती हैं, पर पापा और मैं चाहते हैं कि अब आप अपने बारे में सोचें। जिंदगी बहुत बड़ी है, अकेले नहीं कटती, और कट भी गई तो खुश नहीं रहेंगी आप। इसलिए अपने लिए ना सही, पर हमारे लिए अपनी ये जिद छोड़ दीजिए और शादी के लिए मान जाइए। हमेशा हंसी मजाक और शैतानियां करने वाली अप्पू आज बेहद गंभीर लग रही थी, और उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें कहीं कि राधिका के साथ साथ आशुतोष जी भी हैरत से उसे देखने लगे। तुम तो सच में बहुत बड़ी और समझदार हो गई हो, लगता है जल्दी ही तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करना पड़ेगा। राधिका ने इतनी चालाकी से बात का रुख बदला कि जहां आशुतोष जी बेबस और लाचार नजर आने लगे, वहीं अप्पू ने खींचते हुए मुंह बना लिया।